वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापद्मनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुराधिकेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं गुरुणा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायराधे तन्मयमान् भक्त्यादिहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नमस्ते हर्ष का विषय है श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिन आज होने जा रहा है। क्या प्रसंग हुआ
पुरंजन पठन की
कौन सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भागवत की कथा सुना रहे सारे विश्व से सब ऋषि उपस्थित थे। वहां पर नारद जी जैसे ऋषि, व्यास जी जैसे ऋषि, कभी कभी अंतरिक्ष गौतम इत्यादि ऋषि, सारे ऋषि भाग प्रस्थित वहां पर उपस्थित। गृहस्थ भक्तों में भी बहुत से लोग हैं, उसमें कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, कोई राजर्षि हैं, कोई ब्रह्मर्षि हैं, कोई देवऋषि हैं, एक से एक सभी हैं। और सबने मिलकर के अंत में यही निर्णय किया है, ये परीक्षित महाराज जी के लिए ये भागवत सुनना ही सर्वोत्तम है, और कोई यज्ञ करना, जैसे आजकल कलयुग में बहुत से यज्ञ भी हो रहे हैं, लाखों करोड़ों पैसे बाहर दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इत्यादि भी उसमें जा रहे हैं, तो किसी ने यज्ञ का अनुमोदन नहीं किया। सबने एक स्तर से श्रीमद् भागवत कथा हो, इसी से ही जगत का और इनका उद्धार हो सकता है, इसलिए श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रारंभ किया। शिष्य बैठा गद्दी पर और गुरु वर्ग लोग सभी उसके नीचे बैठे श्रोता के रूप में, और जो व्यास गद्दी पर बैठा उसने जो श्रोता जितने थे वो समस्त श्रोताओं को प्रणाम किया गुरु के रूप में, गुरु ऐसा ही होने से। कोई जरूरी नहीं है कि वक्ता ही श्रेष्ठ हो, श्रोता श्रेष्ठ हो सकता है, किंतु भगवान की कथा उसको सुनने में अच्छी लगती है इसलिए वो सुनता है। आजकल एक ऐसा अभिमान होता है लोग जो पाठक करते हैं, जो बाकी कुछ नहीं जानते और जो बैठा है वही सबसे अधिक जानता है। बोलने से नहीं, भीतर में भाव होने से, भाव नहीं है और खूब बोल रहे हैं और उसका पालन नहीं करते, तो वो तो बहुत ही निम्न प्रकृति का व्यक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर बैठे हुए सबको प्रणाम किया। परीक्षित जी मूल श्रोता है और मूल वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग विचार करें, जो परीक्षित महाराज जी कैसे हैं और सुखदेव गोस्वामी जी कैसे हैं। जिसको कृष्ण ने अपनी गोदी में ली हो, उत्तरा के गर्भ में, जिस परीक्षित महाराज जी को कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसको रक्षा किया और अपनी गोदी में लेकर के उसका लालन पालन किया, सुखदेव गोस्वामी को यह सुयोग मिला कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी को गोदी में खिलाया, उनको प्यार किया, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि परीक्षित महाराज उनसे श्रेष्ठ है। जब विचार करते हैं और फिर दूसरी तरफ जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी कम नहीं है, सचमुच में वो गुरु होने योग्य है। जिसके तरफ में विचार किया जाता है वही मालूम होता है कि श्रेष्ठ है। परीक्षित जी साधारण नहीं थे, जिनके लिए ये श्रीमद् भागवत पैदा हुआ प्रकाशित हुआ, और जो सुखदेव गोस्वामी को अंत में नसीब नहीं हुआ वो परीक्षित महाराज जी को मिला। क्या चीज? इस पर थोड़ा सा विचार करें भागवत लेकर के। सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के मुख से कह रहे हैं, आशा महो चरण रेणु दुषाम हम चा वृंदावने किमक उल्म लभौ सती जाजम स्वजन आद्य पथंजनि भेजे मुकुंद पदवे श्रुति मृवेख्याम। श्रुतियां कोटि कोटि वर्षों से जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए खोजती हैं अभी तक वो मिल नहीं पाए श्रुतियों को। वो कृष्णचंद्र जिनकी मुट्ठी में है, ये चुल्लू भर छात पर जिनको कृष्ण को उन्हें जा देती है, ऐसी ये गोपियां ऐसा प्रेम कृष्ण से करते हैं जिनको वशीभूत कर देती है। उनकी चरण धूलि को पाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना करा रहे हैं कि मैं वृंदावन में कहीं घास जम लूं, घास बन जाऊं, तृण बन जाऊं, लंबी ऊंची घास न बनूं, पेड़ न बनूं, छोटे छोटी दूध की घास और गोलमल लता बन जाऊं। और जिन पर गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं तो गोपियों की चरण धूलि उनके सिर पर पड़ जाए, सिर पर पड़ जाए। गोपियों की चरण धूलि इतनी बड़ी है, उद्धव को सुखदेव गोस्वामी को यह मिला कि नहीं, कभी गोपी हुए कि नहीं और गोपियों की चरण की धूलि मिली कि नहीं, ये बहुत विचार की बात। ऐसा करंटी के साथ में हम नहीं कर सकते, समझ आ
गए?
किंतु जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जी को क्या चीज मिला। भागवत सुनने के बाद में जैसे उनके विचार प्रकट हुए हैं उसे वो कृष्ण की प्यारी गोपी बने वृंदावन में। तो अब अंत जिसका बड़ा हो वही पड़ा है। सुखदेव गोस्वामी राधा जी के प्रिय सुख हो सकते हैं किंतु उनकी सेविका गोपी नहीं हो रही, और ये तैयारी होती है। इस दर्शन में विचार करते हैं तो देखते हैं परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, किंतु आप ये बने हुए पूछ रहे हैं भगवान की लीला कथाओं, यही भक्तों की महिमा है। तो उन्होंने कहा, पूछा तुमने गोस्वामी से, प्रभु ये बतलाइए जीवों के लिए पर्व था बढ़िया। सुखदेव गोस्वामी जी सभा की तरफ में नजर करके, जिसमें तरह तरह के श्रोता बैठे हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक पाठ किया। वो श्लोक था सवई पुरुषां परो धर्मो यतो भक्ति रे अह तुक्य अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। बहुत ही उच्च कोटि का यह श्लोक है। मैं तो समझता हूं कि श्रीमद् भागवत इसी श्लोक की व्याख्या है। जितने भी 12 स्कंध हैं इसी के इस स्तर की बातों को बतलाया गया है आपको। और सब स्कंधों में जीव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? धर्म बहुत से हो सकते हैं। गीता में कहा कि उन धर्मों को छोड़ दो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। एकमात्र हमारा शरण। तो कौन कौन धर्मों को छोड़ने के लिए क्या है? कौन कौन धर्मों को? जिन धर्मों में शरीर मुख्य है, खाना पीना भोग करना ये सब चीजें मुख्य हैं, जिनमें शारीरिक संबंध है, जिन धर्मों में बेटा बेटी धन संपत्ति बाग बगीचे मेरा है ये तेरा है, जिन धर्मों में लड़ाई है। आज बहुत से ऐसे धर्म है जो कत्ल कर रहे हैं लोगों को, खून बहा रहे हैं, उनको धर्म की संज्ञा दी जाएगी? ये सब धर्म ही नहीं है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये कोई भी धर्म नहीं है जो आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इसलिए इन सब धर्मों को छोड़ो जिनमें शरीर की प्रधानता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसका बेटा हूं, ये सब शारीरिक संबंध जिनमें है उन धर्मों को छोड़ो। मन से जिन धर्मों का संबंध है उन धर्मों को भी छोड़ो। इनमें लड़ाई होगी, विवाद होगा। आज देखते हैं ना, अर्थात वर्ष इन्हीं धर्मों के चलते चौपट हो गया, भारतवर्ष से पंजाब निकल गया, उधर में बंगाल निकल गया, लंका चला गया भारतवर्ष से, कहां इंडोनेशिया से लेकर इधर कस्पियन सी तक, कश्यप ऋषि का आश्रम का स्थल था कस्पियन सी, कहां इटली के पास, इधर में मंगोलिया और सब हमारे भारतवर्ष में थे। धीरे धीरे इन जाति और धर्मों के विवाद से हम लोग अलग अलग होते रहे। अभी हाल ही में पंजाब भारतवर्ष से अलग हो गया किसी के नाम पर, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। अभी भी हिंदुस्तान से कुछ प्रांत अलग हो रहे हैं जाति और धर्म के उन्माद। इन धर्मों को छोड़ो, ये सब धर्म नहीं है, ये बनाए गए थे कुछ विशेष परिस्थिति में अपनी रक्षा के लिए बनाए गए, शरीर की रक्षा। आत्मधर्म एक है, वही परम धर्म है, इनको छोड़ो। इसलिए कहते हैं सब धर्म मान परिचय मान एक अनुसरण, सब धर्मों को छोड़ो, इनको जो शरीर से और मन से जिनका संबंध है परम धर्म में आओ। इसलिए कहते हैं सवई पुनसा परिचित महाराज जी को, देखो निश्चित रूप में सवई पुनसा पुरुष मात्र के लिए, यहां पर पुरुष स्त्री के लिए केवल
मनुष्य नहीं, बंदरों के लिए भी, रीछों के लिए भी, सब जानवरों के लिए भी, सबके लिए ये परम धर्म है। कैसे? अरे हनुमान जी कौन जाति में थे? जामवंश जी कौन जाति में थे? इसलिए यहां पर केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सबके लिए कहा गया। सबके लिए परम धर्म है। क्या परम धर्म है? इस चीज को समझना है। संसार में धर्म दो नहीं है, प्राणी मात्र के लिए धर्म केवल एक है। उसी को यहां पर श्रीमद् भागवत में व्यक्त करते हैं। आज के लोग श्रीमद् भागवत को समझ नहीं पाते। व्याख्या करने वाले भी ठीक से उसकी व्याख्या नहीं करते। लोग उसको गलत गलत समझते हैं। इसे केवल एक धर्म, यही परम धर्म है। परम माने क्या? श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये नहीं छोड़ा जा सकता। वो धर्म क्या है? सबई परो धर्मो जहो भक्ति अथोक्षजे। अथोक्ष जो पुरुष है, प्राकृत इंद्रियों के जानने से जो ऊपर है, प्रतीत है, प्राकृत शरीर से, प्राकृत आंखों से, मन से भी जिनको नहीं जाना जा सकता, वो अधोक्षज भगवान कृष्ण है। इनके प्रति अहेतु की भक्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। जाति से संबंध नहीं है, साधारण धर्मों से भी संबंध नहीं है। आप लोगों ने नानक देव का नाम सुना होगा, तेग बहादुर का नाम सुना होगा, जो अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म के। इन लोग रामकृष्ण को ही परम भगवान मान करके उनकी पूजा करते थे। अब धीरे 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 कुछ गड़बड़ी होने से अब लोग विपद पर जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण की भक्ति सब लोगों के लिए परम धर्म है। भक्ति कहा यहां पर कृष्ण को अथोक्षज पुरुष बताया, जो प्राकृत इंद्रियों से उनको नहीं देखा जा सकता, प्राकृत आंखें उनको देख नहीं सकती। इस जगत को बनाने वाला विभिन्न लोग नहीं है, दस भगवान नहीं है, अल्लाह खुदा परमात्मा ये सब अलग अलग नहीं है। इस विश्व को बनाने वाला बस एक ही है, और वो कौन है? वही कृष्ण है, परब्रह्म। सबसे आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत गुणी है, उन्हीं के अंश हैं, स्वांश हैं जितने अवतार। और देवता लोग क्या हैं? जिनकी शक्ति के थोड़े से प्रकाश हैं, उनके सेवक हैं जितने भी देवता जी। समस्त अवतार के मूल अवतार ये कृष्ण है, मैं ही नहीं करा, आप अवतार हैं। समस्त पुराण उपनिषद सभी ऐसा करते हैं। इस तरह परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। देखा था भागवत में, ब्रह्मा जी उनको समझ ही नहीं सके, उनके चरण में बार बार गिर रहे हैं। वो गए थे ब्रह्मा जी कृष्ण को मोहित करने का, और मोहित हो गए अपने आप। इंद्र देखो, कृष्ण ने उनकी पूजा थोड़ी सी हटा दी तो वो कृष्ण पर वज्र छोड़ने लगे, ब्रजवासियों को पानी में डुबाने लगे, अंत में त्राही त्राही कर उनके चरणों में गिर गए। शंकर जी एक बार कृष्ण से युद्ध करने लगे, बाणासुर का पक्ष लेकर के, अंत में कृष्ण से लड़ाई में उनका मृगछाला कमर से खिसक गया, हाथ से त्रिशूल चला गया। कैसी दुर्दशा हुई? भस्मासुर के समय में जब भस्मासुर से भरे, भस्मासुर ने तपस्या की शंकर की, तो उन्होंने कहा, बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए, बोले जब ब्रह्म गुरु ही ब्रह्म मांगो। उन्होंने कहा कि जिसके अंगों पर हाथ दे दूं, सिर पर हाथ दे दूं, वो जल जाए। शंकर जी ने बिना सोचे पूछे कह दिया, या सोच करके भी कहा। ठीक है, जिससे सीता हाथ रखेगा वो जल जाए। पास में पार्वती जी खड़ी थी, उनके ऊपर रूप देख करके मुग्ध हो गया, सोचा जे शिव को खत्म करके मैं उस पार्वती को दे दूंगा, किंतु हुआ उल्टा। शंकर जी ने देखा जो और कौन रक्षा कर, तो प्रभु को स्मरण किया, तो प्रभु ने आकर के इनकी रक्षा। अरे तू किसके लिए भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, तो शिव को खोज रहा हूं किस लिए, जरा उन्होंने मंत्र दिया है परीक्षा करूंगा। अरे बेवकूफ, तू अपने ऊपर में परीक्षा क्यों नहीं कर लेता है, शिव जी की कोई बात सत्य होती है, वो तो झूठा है। कहे सचमुच तो जय ही शिव बना दिया। मोहनी रूप को शंकर जी ने देखना क्या है, कहे मत देखो, बार बार जब की जीत करने लगे तो उन्होंने कहा चाचा देख लो, किंतु सावधान रहना, जो ही मूर्ति प्रकाशित की मोहनी 16 वर्षीय अत्यंत सुंदरी रूप से महिला, शंकर जी दौड़े उनके पीछे पीछे, और ये भगी विश्व में चारों तरफ में नचादियां नंगे हो गए। पार्वती जी ने पकड़ा कर क्या कर रहा है तो भी बोध नहीं, तो भगवान ने कृपा करके अपनी मूर्ति हटा दी, तो शिव जी भाई ये क्या हो, इसलिए शिव जी परम भक्त हैं भगवान के, प्रभु उनको खूब प्रीति करते हैं, भगवान मत समझो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा और शिव ही यदि भगवान नहीं हुए तो और लोगों की तो बात क्या है, उनका कुछ गुण ही मैं इसलिए इनको गुणा बता करते हैं। इसलिए ये कृष्ण परब्रह्म है, देखते हैं नन्हे से छोटे से ये स्वयं भगवान है, इनके प्रति भक्ति हो, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति कहते हैं किसको, अधिकांश लोग 99% लोग जगत के नहीं जानते हैं जो भक्ति किसको कहते हैं। हमने देखा है मथुरा में और सब जगहों में लोग शंकर जी के चौकट पर पहुंचते हैं मंदिर के, और चौकट को ऐसे ऐसे पकड़कर और दो पैसे का बताशा लेकर के, और वह माला जो कि दुकान पर बैठने वाला हजारों माला चढ़ रही है, और वो फिर भीतर रास्ते से वो फिर दुकान पर आ रहा है, और वही माला बार बार टर्न बाई टर्न चली आ रही है, और उसी माला को फिर लेकर के शंकर जी के पास में कहते जी प्रभु हमारा सब रोग दूर हो जाए, हमारा विवाह न हो रहा, प्रभु जी आप विवाह कर, हमारी लड़की को विवाह है, हमारी लड़की को कोई संतान नहीं, इस तरह के मनोरथी मनाते हैं। ये भक्ति नहीं है, भक्ति किसको कहते हैं, छा परानुरक्ति ईश्वरे, वो जो कृष्ण है उनके लिए वह क्रिया काई पाची परमानसी, तन से मन से वचन से, वो सारी चेष्टाएं जो कृष्ण को केवल मात्र प्रसन्न करने के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती, अपने लिए करेंगे तो वो कर्म हो जाएगा, इसलिए मत करो ऐसा। अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी किसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए ये भक्ति मत करो। रावण शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा भारी यज्ञ कुंड बनाया, और उसने अपने सिर को काट करके और आग में शंकर जी उठ करके बैठे, बोले परमाणु अच्छा ये जो भक्ति किया कैसी भक्ति है, भक्ति है कि नहीं कि विचार करेंगे, उसने अपने सिर का जो हवन किया आग में ये किसके लिए, शंकर जी को प्रसन्नता करने के, प्रसन्न हो हाँ प्रसन्नता के लिए तो किया, किंतु प्रसन्नता होने से उनको फिर अपना कुछ बना ले, विश्व में हमको कोई मार नहीं सके, मैं ऐसा भगवान हो जाऊं लंका सोने की हो जाए, इसकी ये भक्ति नहीं, इसको भक्ति नहीं। धन के लिए जो भगवान का भजन करते हैं तो हम प्रभु उनको दे देते हैं, ये भक्ति नहीं हुई, भक्ति की कोटि में नहीं हुई। जो मुक्ति चाहते हैं भगवान का भजन करते हैं, उनके जैसा स्वार्थी और कोई नहीं है, वो सबसे नीच है, उनके जैसा कमी भी नीच नहीं है। मुक्ति क्यों चाहता है, अपने सुख के लिए, जो संसार का दुख न रहे, हम तो ये चाहते हैं जन्म कहीं भी हो, कीड़े का भी मकोड़े का हो, किंतु संतों के मुंह से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। यह अच्छा है ना, मुक्ति अच्छी है? मुक्ति अच्छी नहीं है। नाथ जोड़ी शास्त्रेषु जेषु जेषु प्रजाम व्यहम तेषु अचला भक्ति अत्य शास्त्र सदा वही है। प्रभु अपने कर्मों के फल से हम जीत जोनी में जाए, नरक में भी जाए, वहां पर भी आपकी भक्ति हो, मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपके भक्तों मुख से मैं आपकी कथाओं को। ये भक्ति, यही से भक्ति आरंभ हुई। इसलिए भक्ति में इसलिए शब्द दे दिया अहेतु की, कोई हेतु न हो, कोई कारण न हो। भगवान की भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अहेतु, जैसे आग जलाती है, किस लिए जलाती है? उसका स्वभाव। पानी जहां भी रहे आग को बुझा देता, क्यों बुझाता है? उसका कोई हेतु नहीं है। आप यमुना का पानी लीजिए, पीजिए, आप फिर यमुना में जाइए, डूब जाइए तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। यमुना का इसमें किसी में स्वार्थ नहीं है। इसलिए जीव का धर्म ही है भगवान की सेवा करना। भगवान की जो भक्ति हम करते हैं उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए। नहीं तो कारण दूर हो जाएगा, भक्ति भी दूर हो जाएगी। बेटा के लिए भजन कर रहे थे, बेटा हो गया, भजन छोड़ दिया। हम भजन कर रहे थे खूब, हमने कहा जी हमारा बेटा न मरे, करते करते प्रभु जी से रोज रोज मनौती कर रहे, मनो किंतु लड़का मर गया। अरे हमारा लड़का मर गया, ये छोड़ो, ये पत्थर छोड़ो। इस कारण से जो कुछ होता है वो कार्य समाप्त होने के बाद में वो फल हो जाता है। इसलिए भक्ति ऐसी नहीं होती। भक्ति कैसी होनी चाहिए? पहले मैं थ्योरी के रूप में, विचार के रूप में बतला करके उसके उदाहरण के साथ में मैं बतलाऊंगा। भक्ति के लिए बतलाया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म च कर्माभिमानाप्रतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। थोड़ा सा कठिन विषय है, तभी सुनिए, तब भागवत का सुनना होगा। ये मैं दरवाजे में प्रवेश करा रहा हूं भागवत के। यदि नहीं समझेंगे भागवत में नहीं प्रवेश कर सकते। जो लोग भागवत में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये जानना भी जरूरी है। पूरा नहीं तो थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा, एक दिन में नहीं आएगा, किंतु थोड़ा सा अवलंबन मिल जाएगा जरूर। इसलिए भक्ति का जब डेफिनेशन बतला रहे हैं, परिचय बतला रहे हैं, बतला रहे हैं अन्य अभिलाषिता लौकिक पारलौकिक शारीरिक मानसिक कोई प्रकार की इच्छा मत करो। अन्य अभिलाषिता एक होता है अन्य अभिलाष, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए छोड़ करके कोई भी तमन्ना हृदय में न हो। एक होता है स्वाभाविक स्थिति और एक होता है अस्वाभाविक स्थिति। यदि खूब विपत्ति में पड़ गए, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी बीच सभा में थी, 7,000 बलों का महाप्रभावशाली घमंडी दुशासन उनके जीव को खेंचा, बड़ी मोटी मोटी पूजाएं हैं, बड़ा घमंडी। अब दुर्योधन वहीं पर बैठा हुआ ताल ठोक रहा है, जंघे को कपड़े हटा दिया और कहा जी इसी पर बैठा हो, अंधा का पुत्र है, अंधा होता नहीं, जरा दिखला तू इसे। और कर्ण दांत बाहर करके हंसने लगा और उनका साथी शकुनी, शकुनी माने होता है गिद्ध, गिद्ध जैसा जो व्यक्ति, वो कहे ठीक है, साबा 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 ठीक है, जल्दी से इसको नंगी करके बैठाओ। बड़ी पति प्रता बनती है, देखें इनका भगवान कहाँ है, इनके पांडव कहाँ है, वो खेच रहा है। इनके पक्ष वाले लोग बड़े प्रसन्न होकर के ताली बजा रहे हैं, अब गई, अब गई। उस समय में द्रौपदी जी ने किया, हे गोविंद राकुशर, अब तो बना पहले कपड़े को अपने दांतों, पहले तो पतियों के तरफ में देखा, पति लोग भीम गदा लेकर के उठे, अभी चूर्ण भी चूर्ण कर दूंगा,
युधिष्ठिर ने उनका कपड़ा खींच लिया, अरे जरा बैठो देखो तो खुदा मत बनो, खुदा को आने दो। वो बैठ गए, अर्जुन धनुष बाण लेकर एक बाण से सब सब दुष्टों का संहार कर उनको भी खींच करके बैठ, अरे देखो तो। इसके बाद में भीष्म पितामह की देखा, जब पितामह हम आपके वंश की हैं, बहू है ना, आप मेरी लज्जा नहीं रख सकते, आपसे भी तो कोई नहीं है, आप बड़े बड़े धार्मिक हैं। उन्होंने सिर नीचा कर, अरे गुरु जी द्रोणाचार्य आप तो मेरी रक्षा करें, मेरे ससुर जैसे ही धृतराष्ट्र महाराजा आप राजा हैं, इसको आदेश नहीं दे सकते, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। जब नहीं किया और खींचने लगा, उस समय में उन्होंने देखा कि प्रभु के अतिरिक्त कोई रक्षा नहीं, उन्होंने आंख बंद कर दिया और प्रभु को पुकारने, लेकिन भी अंचल अभी उनके मुख में है, प्रभु छटपटा रहे हैं आने के लिए, किंतु देख रहे हैं कि अभी पूर्ण रूप से इसने हमारे प्रति शरणागत नहीं हुई, अभी दांतों पर फर्क भरोसा है, भीष्म पितामह पति इत्यादि के प्रति तो भरोसा नहीं, किंतु अभी भी अपने दांतों के बल पर भरोसा है, दांत से कपड़े पकड़। जब वो भी नहीं हुआ, जब उसे भी खींचने लगा तो वो छोड़ दिया, और छोड़ करके आंख बंद करके दोनों हाथ उठा दिया प्रभु के, बस वो दूर थोड़े हैं कहीं, छठ कपड़े के रूप में वो आकर के लाखों गज बढ़ने लगा, कपड़ा बढ़ते 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 वो सभा एकदम कपड़े से ढक गई, लाल नील पीली सफेद सब साड़ियां, कृष्ण ही साड़ी बन गए कि कृष्ण ने साड़ी दे दी, कोई निर्णय नहीं कर सका, दुर्योधन कुछ नहीं कर सका। इतने में विदुर जी ने कहा, अब ये विश्व का संहार होने वाला है, अरे दुष्ट अभिमानो देख नहीं रहा है, तब अंत ने आदेश दिया, अरे बंद करो। इस तरह से अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, उसने अपने विपत्ति में प्रभु को बुलाया, ये असभावी की स्थिति थी, इसमें कोई लालसा भी हो जाए तो वो क्षम्य है, घर में डकैत घुस आए और उस समय कहे प्रभु रक्षा करें, ये कोई बात नहीं, किंतु स्वाभाविक स्थिति में नहीं होना चाहिए, जो प्रभु हमको धन दो पुत्र दो हमारी हमारी रक्षा करो, तब वो भक्ति सहज हो जाए। इसलिए अपने जबकि बुद्धि ठीक है, स्वाभाविक स्थिति है, तुमसे कुछ मत मांगो, वो देने वाला समझने वाला जो हमको क्या जरूरत है वही जानता है, इसलिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए, पहले ये समझो। अब भक्ति किसको कहते हैं, इसी के लिए बतला रहे हैं, ज्ञान कर्म आदि अनापण, पहला उसका ये है एक हेतु, उसमें पहली शर्त यह है, कोई भी लाल जागतिक और पारलौकिक कोई भी कामना उस भक्ति के लिए मत करो। हम किसी को 5000 रुपया हम देते हैं, अच्छा फूट के सैकड़े दर से कितने मिले बतलाओ तो, जहां पर 13 रुपये 13.5 रुपये सूद मिल रही है, हम अपने रुपये को लगाते हैं, कम है नहीं लगाते, ये अहेतु की नहीं हुआ, ये कारण हुआ, भगवान में कारण और सूद मत देखो, कोई भी लालसा न हो, बस वो प्रसन्न हो। दूसरी बात कर्म ज्ञान जो तपस्या के अधीन भक्ति न रहे, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति परम स्वतंत्र वृत्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति में भी दुराचारी व्यक्ति में भी यदि भक्ति हो जाए तो संसार में सबसे श्रेष्ठ बना देगी। अजामी यरत्नापक दस्यु वाल्मीकि जी, कितने कितने दुष्ट लोग हो, जगाई मधाई अभी दुष्ट लोग है, किंतु भक्ति ने जो भी प्रवेश किया है उसको संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया, भगवान का सबसे अधिक प्यारा हो गया। इसलिए गीता ने भी कहा, अभिचेतु दुराचारो भजते माम अनन्यवाद साधु एव समन्तप्त सम्भक्तव। अतः दुराचारी व्यक्ति भी हो किंतु भगवान के अनंत भजन करता है तो वो उसको साधु समझो, उसकी निंदा करेगा तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, मत निंदा करो, नर्क में जाना पड़ेगा। अब वो जल्दी से ही धर्मात्मा क्षिप्रम भाव के धर्मात्मा बहुत जल्दी भक्ति के प्रभाव से इसलिए कर्म के द्वारा भक्ति को मत ढको। यज्ञ एक कर्म है, घी डाल करके अग्नि में स्वाहा करते हैं। आजकल वैसे पुरोहित भी कम है, यदि हो भी तो ये सब कर्म है, इसके द्वारा भक्ति को मत ढको। कैसे ढकेगी? उसमें भगवान का नाम होता है, वहां पर भागवत की कथा होती है, भक्ति की कोई बात होती है, इसलिए भक्ति उस कर्म के द्वारा यज्ञ इत्यादि के द्वारा ढक गई। उसका अधिक से अधिक फल हुआ, यदि करोड़ों यज्ञ किया तो स्वर्ग में स्थिति होगी, और स्वर्ग में जाकर के क्या होगा? ते तम स्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्लोकम विशंति। यदि स्वर्ग में भी गए यज्ञों के द्वारा तो वहां से फिर उल्टे लौट जाना पड़ेगा, जबकि तुम्हारा कर्म का फल क्षीण हो जाएगा, फिर लौट आना पड़ेगा। बहुत से लोग लौट आए हैं वहां से, और अधिकांश लोग मैंने सभी लोग प्रायः लौट आए, अपने कर्मों का फिर इस संसार में फल भोगेंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, उसे अच्छा। वहां पर क्या है? वहां पर केवल भोग ही भोग है, वहां पर तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए सबसे कोटि गुण श्रेष्ठ ये पृथ्वी है, जहां पर कि भगवान का भजन हो सकता है, जहां पर कि संत लोग होते हैं। एक बार देवताओं ने कहा था सुखदेव गोस्वामी से, ये भागवत की कथा हमें दे दें और स्वर्ग इत्यादि जो कुछ है सब कुछ आप लोग ले। और जैसे मूर्ख बनाता है, मूर्ख समझता नहीं है। ये परीक्षित जी और इनकी सभा भागवत का रस स्वादन करेगी और वो लोग बैकुंठ में जाए, ये साधारण चीज नहीं नहीं है। इन्हें देवता लोग भी ललचते हैं कि मनुष्य जन्म हो और हम लोग भगवान का भजन करके भव सागर को पार कर जाए। इसलिए मनुष्य जन को साधारण आत्मा से मत समझेंगे, और ऐसे तैसे आप लोग उसको वृद्धा गमा मत देंगे बिना भजन के। इसलिए कहते हैं कर्म के द्वारा भक्ति को मत ढको, ज्ञान के द्वारा भक्ति को मत ढको। ज्ञान किससे माने क्या? मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, सोहम कर मैं भी वही। दुर्गा जी पार्टी में खड़ी रहती हैं और सुनते ही खड़ग निकाल करके उसका सिर कत्ल करके मुंडमाला में पहन लेती है, शंकर जी को पहना देती है। क्यों? अरे कल तक तेरी मैया थी, अम्बा 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 कहता था और हमारी आराधना करता था, अब तू शिवोहम शिवोहम कहता है, शिव का दास, शिव का दास नहीं ये कहता, तो शिव का दास नहीं कह करके कहता है शिवो मैं शिव। पार्वती का जाके कल तक तू तो मेरा सेवक था, आज तो हमारा पति बन गया, शिव बन गया, पर खट लेकर के गला उतार देती। ऐसे ऐसे लोगों का ही मुंडमाल अपने गले में बनती है और शंकर की गले में। इसलिए शिवा मत करो, सोहम सोहम मत करो। अरे जो मृत्यु और जन्म में पड़ा हुआ बिल बिला रहा है, स्त्रियों के लिए पति उनको घर से बाहर कर देता है, कहता है विचार करो, व्यभिचार नहीं करेगी तो मैं नहीं रहूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। इसे बतलाओ कितनी ऐसी सबसे पर उन्हें निकलती है। उस समय में स्त्री बिदेदारी वो स्वयं है ब्रह्म है, जो अपने पति से भी प्रतिकार नहीं कर सकती और वो ब्रह्म बन गई। पुरुष लोग भी खूब अच्छे थे, एक कंपनी के डायरेक्टर थे, उनको 1,00,000 रुपया महीना मिल रहा है, न जाने क्या कैसी हवा चली और उनको पक्षाघात हो गया, पैरालाइसिस हो गया, निकल गया ब्रह्म ना सोहम 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 और सोहम है ब्रह्म है, जगत को जन्म देने वाले हैं। इसलिए ऐसे मंत्रों का उच्चारण आप लोग मत करें, सोहम सोहम शिवहम मत करो, मैं शिव का दास हूं ऐसा कहो, मैं भगवान का दास दास उसमी दास करो, नहीं तो ऐसे करने से भक्ति थक जाती है और नष्ट हो जाती है, ऐसा मत करो। जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा भगवान मिलेंगे, एक मार्ग मिलेंगे कैसे, ये ऐत की भक्ति को कहते हैं, इसी के द्वारा मिल सकते हैं। ये भक्ति तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की माने तीन प्रकार की नहीं एक ही प्रकार की, किंतु तीन स्टेज उसके हैं। कौन कौन सा? एक साधन, साधन भक्ति, एक भाव और एक प्रेम। साधन भक्ति होना चाहिए। पहले मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण का हूं, मैं दूसरा कुछ नहीं। हमारा इसमें जो मेरी जो आत्मा है वो कृष्ण का दास है, ऐसा समझ करके सदगुरु से पूछे, जो कि भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवान का नाम करते हैं, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे कौन? नारद जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, उनकी धारा में रहने वाले जो लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, ये सब लोगों से पूछो कैसे भगवान मिलेंगे। पहले देखो, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति होने पर साधन का संभव होता है, इसलिए सुकृति करो। सुकृति क्या? कोई भी चीज भगवान या भगवान के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सेवा की भावना हो और कुछ करो। जैसे हमने गाय दुहा, गाय ने बच्चा दिया, उसका पहला जो दूध 21 दिन के बाद में होता है ठाकुर जी को लेकर के मंदिर में। ठाकुर जी के घर में बत्ती के लिए घी, रुई, ये सब दे दिया, बत्ती लग रही। इसे जो सुकृति होगी, अच्छे कर्म हो गए, इसे भगवान के चरणों में अगले साधुओं का संग होगा, वो उनको भगवान में लेकर के लगा दे। एक चूहा तेल पी रहा था प्रदीप में और वो बत्ती अब बुझने जा रही थी, तो जब गया पीने के लिए तेल, इतने में उसके दांत नुकीले होते हैं, वो झट बत्ती में लगे और जरा दिया बत्ती उसकी प्रदीप पर आगे बढ़ गई, धक से जल उठा प्रदीप, वो डर के मारे भागा। अब उसको बत्ती जो बुझ रही थी उसको बढ़ाने के लिए उसको स्वीकृति हो गई, जन अनजान नहीं। अब दूसरे जन्म में वो महात्मा होकर के साधनों का संग करके, गुरु करके और भगवान को प्राप्त करके, इसको कहते हैं सुकृति। इसी तरह से बहुत से उदाहरण है। एक कबूतर बैठ रहा था पेड़ की डाल पर, वहीं पर मंदिर था, एक बहलिया ने बाण मारा, वो गिर गया और वो बेहोश स्थिति में छटपट आता हुआ मंदिर के चारों तरफ में परिक्रमा कर लिया। हो क्या गया? उसकी सुकृति हो गई, दूसरे जन्म में उसकी श्रद्धा होकर के साधुओं के संग में गुरु पदार्थ रह करके भगवान को पा लिया। ये प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जिन लोगों को देखते हैं कि इस जन्म में तो ऐसी सुकृति नहीं की किंतु सदगुरु लाभ हो गया, समझे पूर्व जन्म में वो प्रक्रिया पार कर चुका है, तब वो साधन भजन में आए। बिन गुरु भवन थी तहे न गुरु, बिना गुरु के कोई भी भव सागर को नहीं पार कर सकता। गुरु का लक्षण क्या? भगवान का नाम करते हैं, कृष्ण को भगवान जानते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, तन मन से भगवान का भजन करते हैं, सब तो ठीक है। ऐसे गुरु नहीं मिलने से, जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के समय में पीछे से बहुत से गुरु हैं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु थे, चारवाक उनका नाम था। चारवाक माने क्या? सुंदर सुंदर बोली से लोगों को मोहित करने वाले और उनके फॉलोअर हो जाते। उनका भाषण सुनने के लिए करोड़ों लोग से कम नहीं इकट्ठे होते, जहां जाते थे करोड़ों लोग उपस्थित हो जाते। कहते थे ये देखो, देवता देवी कुछ नहीं, गीता भागवत रामायण वेद कुछ नहीं, साधु संत कुछ नहीं, खाओ पियो मत पड़ो, ऋण कृपा घृतम पिबे, ऋण करके भी घी खाओ, घी से शरीर बनता है, और कसरत करो और बस यही भगवान का सबसे मिलना है। सादर सादम पिता माता का मत करो, क्यों? अरे उनको थोड़े मिलता है, यहां तुम चावल दाल लड्डू पेड़ा रसगुल्ला देगा उनको कैसे मिल जाएगा? छत पर मैं बैठा हूं, हमको यहां मंत्र के बल से हमको कोई खिला दे तो मुझे बात तो ठीक करता है, धर्म का कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। एक साधु उसको संत मिला, भाई तुम 76 हो और तुमको यहां कभी भी चीज नहीं मिलती है, तब बैंकों पर ही मिलती है, मैं बैंकों तो हूं ठीक है, अच्छा तुम छत पर बैठो, मैं तुमको यहीं से तुमको दिला देता हूं। तो वो छत पर चल गए थे, पर दिखलाओ तो तेरी साले की, तेरी मां की, थप तेरी की, दो चार गालियां दिया, ऊपर से उतर के मार लिए खड़ा हो गया। मैंने तुमको, मैं नीचे से तो मैं कहा था, तुमको थोड़ी ऊपर में गई, अरे मंत्र ऐसे ही है, लाख योजन दूर, लाख दीप दूर, दूसरे लोगों में मंत्र दे सकता है। एक छोटी सी गाड़ी यदि तुम्हारे छत पर पहुंच गई हमारी, तुमको लगी क्यों, क्यों लगी? चार रात में ऊपर हो गया उन लोगों का, अब पड़ गया पाला गोपियों से, क्या है ना,
गोपियों से पड़ गया पाला।
हाँ, अब गोपियों से पड़ गया पाला। जरा जरा एक कीर्तन भी मैं सुना दो तो, कहते कृष्ण भगवान को गोपियों से पाला पड़ गया। अभी तक कृष्ण को किसी से पाला नहीं पड़ा था, अब गोपियों से पाला पड़ गया। जरा सुन लो, जल्दी करो। समझो भक्ति क्या है, इसलिए पहले बतला रहा था साधन भक्ति। बिनु गुरु पद
भवन
भवन की तरह, बिना गुरु का नहीं होगा, किंतु कर्मी गुरु से, हारमोनियम बजाने वाले गुरु से, एकलव्य के गुरु से नहीं होगा, उसे भक्ति नहीं होगी। वो तो नारद जी हों, प्रहलाद जी हों, हनुमान जी हों, शंकर जी हों, पार्वती जी हों, ऐसे लोगों की कृपा से होगी। ऐसे गुरु उनकी धारा में बहने वाले हों, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्तियों के सिर पर हाथ रख दिया और प्रेम से नाचते हुए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधे हा राधे। जिधर उन्होंने दृष्टि देखी, मनुष्यों कोई नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, एक हाथियों का दल जा रहा है, उनके तरफ में कृपा दृष्टि की, हाथी चूर्ण उठा करके कृष्ण कृष्ण कहते हुए घुटनों को टेक दिया। ये है ना गुरु, शंकर के चारों तरफ से घेर दिया, उन्होंने पानी उठाया और कृष्ण कृष्ण मंत्र करके छोड़ दिया, सब हाथी कृष्ण 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 कृष्ण। गंडार बाघ भालू चैतन्य महाप्रभु पूरी से जा रहे हैं धीरे धीरे वृंदावन में, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही, मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, उठाया कृष्ण उठाया, कृष्ण के लिए मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। और समय कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, बाघ भालू हाथी गंडार सर्प हिरण सब एक साथ में उनके पीछे पीछे डूबते हुए कृष्ण कृष्ण कर, जिधर नजर घुमाई उधर में कृष्ण कृष्ण। ये गुरु है, ऐसे गुरु को चाहिए जो कृष्ण में एकदम सराबोर जिसकी मति है, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियाकांको भी यदि लभ्य थे तर्क लौलमति मूल्य में करम जन्म कोटि सुकृत न लभ्य। जन्म कोटि कोटि की स्तुति से साधु संग होता है, यह बात तो ठीक है, किंतु यह प्रेममयी जो रसमयी जो वृंदावन की जो भक्ति है, गोपियों की भक्ति, ये कोटि कोटि सुकृति देने से भी नहीं होगा। इसलिए गुरु यदि वैसा मिल गया रसी कृष्णमय जिसका चित्त है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, बल्कि कृष्ण को भी हटा करके राधे 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 का समझ गो, जब कृष्ण उसकी मुट्ठी में आ गए, कृष्ण से मांगना नहीं पड़ेगा भक्ति। ऐसे रसी भक्तों का गुरु का जब तक संग नहीं होगा, भक्ति रसमयी वृंदावन वाली भक्ति नहीं मिल सकती है, वैकुंठ वाली हो सकती है, कुछ मिल जाए साधन। ऐसा साधन होना चाहिए, साधन किस लिए, मेरे अंदर में कृष्ण के प्रति भाव आ जाए, भाव को लक्ष्य करके जब भक्ति की जाती है साधन किया जाता है। साधन क्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम राष्ट्रम सप्तम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज जी आगे अभी आने वाला है, मैं सबको एक तरह से विहंगम दृष्टि से आप लोगों को बतला रहा हूं, कुछ को सात चीजें बतला रहा हूं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, श्रवण भगवान की कथाओं को श्रवण करो, कौन भगवान, कृष्ण, उनकी अद्भुत अद्भुत कथाओं को सुनो, गोपियों के साथ में कृष्ण की जो लीलाएं हुई संस्कांग और सबसे गंभीर लीलाएं हैं, कोटि कोटि जन्मों में ऐसे संतों का गुरु का यदि हो गया, गुरु से दीक्षा लिया, दिव्य ज्ञान हुआ, पाप सब दूर हो जाएंगे, तब भक्ति का साधन आरंभ होगा। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन दास्य सख ये सब साधन यदि इतना नहीं बन सकता तो साधु संग भागवत प्रमाण मथुरा बात मन वृंदावन इत्यादि में बात श्री मूर्ति श्रद्धा है श्रीमन साधु का संग करो रसिक वैष्णवों का और उनके मुख से श्रीमद भागवत सुनो और उनके मुख से भगवान का कीर्तन सुन करके तुम भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्त मंत्रों का सार नाम लेंगे ये मंत्र करो और भगवान राधा कृष्ण की सेवा करो पंचायती में मत जाओ एक निष्ठा भी नहीं है एक निष्ठा है जो भगवानों का भी भगवान है स्वयं भगवान कृष्ण है इसलिए भागवत ने कहा देखो संदेह मत करो एटी चार अंश कला जितने भी अवतार हैं वो अंश और कला है कृष्ण तू भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है उनका भजन करो यदि कल्याण जान सब गुरु यही बतलाएगा अब दूसरे बतलाएंगे यज्ञ करो तपस्या करो सोमवार करो मंगलवार करो बुधवार करो बृहस्पतिवार शुक्रवार संतोषी मैया इत्यादि सबकी कहेगा जगत को ठगना नहीं चाहते इसलिए सुख गुरु कहेगा जय राधा कृष्ण के चरणारविंद में एकांतिक रूप से आश्रय करो इसलिए सबसे पहले साधु संग में जाने से कहा जाए शुद्ध गुरु बतला देगा ये लक्षण क्या है समस्त शास्त्र जानता है किंतु स्वयं भजन नहीं करता वो गुरु नहीं है एक भागवत के बाद वक्ता थे कहीं भागवत पाठ कर रहे थे मथुरा या किसी जगह तो वो उनकी स्त्री भी सुन रही थी अम्बरीश महाराज की कथा सुनी और सुन करके एक सूची जैसे आज मैं एकादशी करूंगी तो जब भागवत सुन करके आई उसके पति ही भागवत पाठ कर रहे तो उसने घर में आज कुछ बनाया नहीं फल मूल तैयारी करके रख ये पति आएंगे और हम दोनों खाएंगे पति ने ही ऐसा कहा तो घर आए तो उसके पति ने पूछा जैसे रसोई बनाई तो रसोई क्या बनाती आज तो एकादशी है तो कुछ भी नहीं बनाया अभी जल्दी से जाओ पूरी बनाओ और आलू का दम बनाओ और अरहर चना की दाल बनाओ अच्छी तरह से नहीं तो अभी तुम्हें पीट करके घर से बाहर कर दूंगा अरे आपकी करनी और कथनी में कितना अंतर आज एकादशी है और आप मांग रहे हैं आप दूसरों को उपदेश दिया ऐसे गुरु से नहीं होगा जो स्वयं भगवान का नाम नहीं करते आचरण नहीं करते शुद्ध भक्ति नहीं करते ऐसे गुरु से लाख जन्म में भी लेते इसलिए शुद्ध भक्त से मंत्र लेना चाहिए अन्यथा नहीं होगा इसलिए साधु संघ भागवत श्रवण मथुरा आवाज वृंदावन में बात करो बीच बीच में नहीं हो तो मन से भी वृंदावन में सोचो मैं वृंदावन जब भजन करने बैठो बहुत गुप्त रहस्य ये सब बतला रहा हूं घर में बैठो सोचो जब मैं वृंदावन में कहां पर हूं जमुना के किनारे जमुना कल कल बहरे उसमें कमल के फूल खिले हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं मानो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं कोयल कुहक करके राधे राधे और सभी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं मयूर नाच रहे हैं फूलों की सुगंध से एकदम चारों तरफ में सुगंध फैल गया है उसी समय में देखा जैसे राधा कृष्ण एक कदम वृक्ष की छैया में सुंदर सोने के सिंहासन पर बैठे वहां रह करके वृंदावन में बैठे नहीं चले जाओ गोवर्धन में कुसुम सरोवर के पास में बैठ जाओ मनी मन में गोवर्धन की परिक्रमा दे डालो मनी मन में और वहां पर बैठ करके सोचे जी वहीं पर मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राधे श्याम श्याम इत्यादि कर वृंदावन में बैठ करके करो घर में बैठ करके मत करो यदि वहां पर नहीं जा सकते हो तो मनी मन वहां पर जा सकते हो उसमें पैसा किराया का भाड़ा नहीं लगेगा किंतु मन को ऐसा पड़ो और भागवत की कथा इतना भी नहीं होता है बस एक काम साधुओं के आश्रम में सदगुरु से दीक्षा इत्यादि लेकर घर में बैठे बैठे ही बस केवल एक नाम को ने? एक नाम के बल पर भगवान सभी मिल जाएंगे और सब साधन उसमें हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा सदगुरु का केंद्र पदार्थ करना पड़ेगा साधुओं का भागवत जरूर सुनना पड़ेगा और उसमें मुख्यता रहेगी किसकी बस एक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ये वृंदावन में जाने का तरीका है ये सब साधन है अब हम चलते हैं ये तो हुआ भक्ति इस तरह से शुद्ध भक्ति का साधन करेंगे अब थोड़ा सा उदाहरण देकर सबसे पहले अभी ध्रुव जी का चरित्र उन्होंने सुनाया। ध्रुव जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारद जी के पास में गए और उनसे मंत्र लेकर के 6 महीने तक ऐसा कठोर साधन किया जो पानी तक भी नहीं पिया, हवा तक भी नहीं ली और भगवान उनके सामने में खड़े। ध्रुव जी किस लिए भगवान का भजन किया इसको समझिए पहले, किस लिए? भगवान प्रसन्न। भगवान प्रसन्न होकर के क्या हो, हमको ये राज्य जो है पिताजी वाला ये मिल जाए, तो ये हो गया अन्नाभिलाष। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो किया, किंतु उसका फल मांग लिया अपना, मैं राज्य का मालिक हो जाऊं। प्रभु ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी का निष्कंटक राज्य होगा। जन भगवान अंतर ध्यान हो गए बढ़ते करके और बड़े रोने लगे, हाय हाय मैंने क्या किया, मैं तो पत्थर ढूंढ रहा था कांच का टुकड़ा और मुझे चिंता मनी भगवान मिल गए और उनसे मैंने ये कांच का टुकड़ा मांग लिया, हाय मैं वंचित हो गया। प्रभु अब नहीं चाहिए, अब हमको आप वैकुंठ में गति देकर के अपनी सेवा हमसे कराए। कहे नहीं, अब 36,000 वर्ष तुमने जो वो थोड़ी सी गलती की उसके लिए 36,000 वर्ष श्रद्धा में रहो, इसलिए इनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, ये कुछ कर्म मिश्रा भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं। कृष्ण के लिए भजन नहीं किया था, कृष्ण के लिए किया किंतु उसने मांग लिया दूसरा फल, इसलिए भक्ति नहीं हुई शुद्ध, इसलिए वो रह गए 36,000। इसके बाद भी उनको जो लोक मिला वो वृंदावन नहीं मिला, वैकुंठ नहीं मिला, इस जगत में ही कोई स्थान नहीं मिला। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो अजामिल का उपाख्यान अब आने वाला है कल। अच्छा, अजामिल ने किया भगवान का अनामिल किया नहीं, गलती से भूल से अज्ञानता से ही अपने छोटे बेटे का नाम जो बेचार से उत्पन्न हुआ व्यभिचारिणी पूर्णचंदी से उसका नाम नारायण था। तो ब्राह्मण बड़ा कुल का और अच्छी स्त्री से शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसके माता पिता की वो सेवा करता था, रोज हवन इत्यादि कार्य करता था, किंतु एक शूद्राणी वो भी पुंज चला माने वेश्या से भी अधिक गई और उसके फेर में पड़ गया जाल में और सब कुछ जलांजलि देकर के अब डकैती चोरी करने लगा। ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं करता, किंतु बेटे का नाम रख दिया, ये नारायण नाम रखना ही उसके लिए महा सौभाग्यवान था। जब मृत्यु हुई तो उस समय में अभ्यास बनता नारायण नाम मुख से निकल गया बेटी के लिए, भगवान के लिए नहीं। किंतु हुआ क्या, प्रभु ने अपने नाम के बदले नारायण चाकू भेजे शंख चक्र गदा और उन्होंने जम के दीतों को मार करके भगा दिया, उसको जीवित कर दिया। जब चरण छूने के लिए दौड़ा तो ही भगवान अंतर, वो चारों भगवान के दूत अंतर दिया। थोड़ी देर के बाद नहीं उठा, अरे नारायण नाम भूल से मैंने कहा और मृत्यु पर मैं विजय पा लिया, अब मैं भगवान का नाम शुद्ध रूप से पहले अपने बेटे के लिए स्त्री के लिए करता था। मां व्यभिचारी था, लंपट फूट बदमाश था, डकैत चोर खूनी था, अब मैं नहीं करूंगा। हरिद्वार चला गया और जाकर के वैष्णव के संत में संग में रह करके भगवान का नाम नारायण नारायण। फिर वही दूत आए और उनको ले गए। ये तो नाम का फल देखो, किंतु गुरु ठीक नहीं मिला। गुरु का मिले थे, उनके चारों गुरु ही गुरु वही हैं, किंतु इस जगत में साधन करते समय संग ऐसा नहीं मिला, नहीं तो ब्रज में जा। अब इसके बाद में आएगा प्रहलाद महाराज का। भगवान ने खुद कहा नृसिंह जी ने, कुछ बर मांगो, मैं बनिया नहीं। बनिया लोग क्या करते हैं, बनिया लोग दुकान पर बहुत सी चीजों को रखते हैं, उनके पास में डंडी भी तौलने की होती है। कहा जब 5 रुपया किलो है चीनी, 10 रुपया आजकल किस जाने कितनी है, 12 रुपया 13 या 20 रुपये, कहा जब 20 रुपया है, सब दुकानों में यही रेट है, मेरी चीनी अच्छी है और जब चीनी तौल लेगा तो डंडी मार करके कुछ उसमें ले लेगा और पैसा लेकर के चीनी देगा। तो मैं बनिया नहीं हूं जो मैं पैसा लेकर के कोई चीज दूंगा, मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं की थी, बनियागिरी के लिए नहीं कि आपसे कुछ मांग लूंगा और आप दे देंगे। प्रभु हमारे अंदर में मांगने की कामना है वो सब खत्म हो जाए। कृष्ण फिर भी तुम मांगो, भगवान ने कहा नृसिंह जी ने, मेरा दर्शन अभ्यर्थ है, जरूर काम करेगा। उन्होंने कहा अच्छा तब एक बात कीजिए, हमारे पिताजी ने, जिसको मैंने पिता माना, पिता तो आप ही हैं परम पिता, क्योंकि लौकिक जगत में जो पिता है आपकी और मेरी बहुत उन्होंने शत्रुता की, उद्विग्न किया, इसलिए इनकी गति हो जाए। अरे काजे बेटा, ऐसा चिंता मत करो, जो भगवान का भजन करता है साधारण रूप में उसके सात पुरुष तर जाते हैं, ऐसे जो मध्यम होता है उसके 14 पीढ़ी, और जो तुम्हारे जैसे भक्त हैं उनकी 21 पीढ़ी बिना भजन के ही तर जाती है। तो तुम्हारे पिताजी तर गए हैं क्योंकि वो जय विजय है ना, लोग तो समझते नहीं है ये कौन है, तो वो तो तर गए हैं, उनके लिए चिंता मत। फिर मांगो कुछ, तुमने कहा जी प्रभु हमको ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं तुम मांगो। उन्होंने कहा जगत के जितने जीव आपको भूल करके संसार में दुखी हैं और करोड़ों जन्मों से दुखी हो रहे हैं, तिताप में जल रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका सब दुख सारे हमारे सिर पर आ जाए, मैं जन्म जन्मांतर होकर और उन लोगों को भक्ति हो जाए और उन लोग वैकुंठ हो जाए, ऐसे प्रणाम। भगवान का नाम कीर्तन करते थे, बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, दूसरों को भी शिक्षा देते थे। और जामिन ध्रुव जी ये दूसरों पर कृपा कर नहीं किए, किंतु इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के असुर बालकों से लेकर के सबको कृपा की, भगवान का भजन करो। वो साधु साधु नहीं है जो कि दूसरों को भाव सागर से तारने की चेष्टा नहीं करता, अपने लिए तो सभी खाते हैं, दूसरों को खिलाए सब ना, इसलिए मैं भजन करता हूं, दूसरों को भी भजन कराऊं कृष्ण का, ये बड़ी भारी साधुता है। प्रहलाद महाराज ऐसे, इनसे भी बड़े वृत्तासुर का उपाख्यान अभी आने वाला है, वृत्तासुर जिसे भी श्रेष्ठ, प्रहलाद महाराज जी भी श्रेष्ठ, कैसे श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ हैं वृत्तासुर जी, लड़ाई के मैदान में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं तन से मन से वचन से आपकी सेवा करूं, उन्हीं ने उन्होंने बताया कि गोपियों की जैसी भक्ति है ऐसी हमारी भक्ति आपके चरण में हो। अजात पक्षामी मां परम खगा, जैसे पक्षी जिसको अभी डैने नहीं उठे हैं, पंख नहीं आए हैं, वो माता के लिए सब समय छटपटाता है, मैया कुछ लेकर के आएगी हमारी रक्षा करेगी, किंतु अपने लिए वो तड़पता है, मैया के सेवा के लिए नहीं। एक बछड़ा रोता है किस लिए, मैया नाते मिलते ही वो स्तन में पहुंच जाता है, दूध पीता है, मैया के लिए बछड़ा नहीं रोता, जो ही उसका पेट भर जाता है दूसरे मैया की तरफ में देख करके इधर उधर कूदने लग जाता है। बेटों को भी देखिए खूब स्नेह से चिपका करके उसको गोदी में दूध पिलाए, और जब पेट भर जाएगा तो क्या करेगा, गोद से उतर करके भागेगा, पकड़ने जाओ भी पकड़ में नहीं आएगा, और यदि दो पंख लगा दिए कौन सा, विवाह कर दिया ना और कुछ नौकरी चाकरी करा दो तो देखो मजा, उड़ करके तुम्हारे पास में आएगा नहीं लौट करके, है ना, इस चीज को समझो। इसलिए कहते हैं ये भी स्वार्थ है, किंतु प्रेयसी प्रिया के लिए, प्रिय के लिए, प्रेयसी माने विवाह का भी संबंध नहीं, प्रेम केवल उसमें है, जिस प्रकार से प्रिया प्रियतम के लिए उनके लिए नाम को पुकारती है, उनके लिए रसोई बनाती है, खिलाती है और कुछ नहीं चाहती, उनकी बातें ही सुनने में और कहने में उसको अच्छा लगता है, सेवा भी करती है, हे प्रभु मैं आपकी उसी प्रकार से सेवा कर सकूं, ये भक्ति है। किंतु इनसे भी बढ़कर के जब ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी की भक्ति बहुत, कृष्ण ने किसी का रथ नहीं चलाया, नौकरी नहीं की, अर्जुन का रथ चलाया, द्रौपदी का तीर हरण किया, द्रौपदी जैसे कहती है वैसे उठते बैठते हैं, इनकी भक्ति बहुत ऊंची है। इनसे भी जदुवंशियों की द्वारकापुरी में सब लोगों की भक्ति है, उसमें उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु उद्धव जी से भी गोपियों की भक्ति बहुत है। इन सबका जो कुछ देखते हैं ये बिना साधु संघ का नहीं हुआ, ध्रुव का हुआ नारद जी के संग से, प्रहलाद जी का हुआ नारद जी के संग से, वृत्तासुर का कैसे हुए नाग और पर्वत ऋषि के संग से, इसी तरह से ये जगत में साधन में ऐसा बिना साधु संघ के बिना गुरु के नहीं होगा, ये चीज इसलिए साधन गुरु के भाव अवस्था बिल्ल मंगल का आप लोग नाम नहीं जानते, चिंता नाम की चिंतामणि नाम की एक बेस्या थी, उस पर आसक्त हो गया, अपनी स्त्री को बाल बच्चों को छोड़ करके अपने पिता के साधक के दिल में गटरी में बांध करके मिठाई लड्डू सब
और चल पड़ा अपनी बेशिया को देने के लिए। इधर ब्राह्मण जेमिनी, जब देखा रात हो गई है, पानी लबालब नदी में भर रहा है, बड़ी तीव्र गति से धारा प्रवाह बह रहा है पानी, कैसे पार जाऊं, वर्षा की परवाह नहीं उसने की और नदी में कूद गया। इतने में देखा ये कोई चीज बह रहा है, लकड़ी समझ करके उस पर बैठ गया और खेते खेते उस पार में गया। उधर देखा ये वर्षा जोरों से हो रही है, अंधकार, चिंतामणि पुकारा किंतु कोई शब्द नहीं किया। तो वो धीरे धीरे चारों तरफ घर के तरफ में ढूंढ रहा है कैसे ऊपर जाऊं और उसके घर में जाऊं। देखा एक रस्सी झूल रही है, रस्सी को झूलती हुई को पकड़ लिया और जब ही ऊपर पहुंचा रात से नीचे गिर गया। चिंतामणि, अरे क्या आवाज हुई, देखा अरे ये तो बिल्लू मंगल है। उसको घर में ले गई, अपने दासियों की सहायता से उसे आग तपाया, गीले वस्त्र को हटा करके सूखे वस्त्र दिया। जब उसको होश हुआ था जैसे इस हार नाम रक्त मांस के शरीर के लिए इतना तुमको प्रीति, तो भगवान के लिए प्रीति तुम्हारे अंदर में नहीं है। अरे भगवान के लिए देखो, हम उपहार नहीं तुम्हारा कर सकती, तुम आए कैसे। एक लकड़ी थी उसको नौका में उसके ऊपर में बैठा, चलो तो देखे। तो सवेरा हुआ, देखा जो वो मरा हुआ चार पांच दिन का सड़ा हुआ शव जिसे दुर्गंध निकल रही है, कोई निकट नहीं जा सकता। अरे घर में कैसे आया, रस्सी पकड़ कर देखें तो देखा जी काला सर्प ऊपर से झूल रहा था, उसको सांप को भी काल को भी उस स्त्री के आसक्त में मुंह में ऐसा हुआ। इसका एक लाख का एक भाग भी भगवान के चरणों में यदि आसक्ति हो गई उसका जीवन सुधर जाएगा। अंत में भगवान ही उसको लेकर के अपने आंख को छोड़ लिया। कहीं जब छोड़ करके जाने लगा तो रास्ते में कोई एक नवेली विवाही कोई स्त्री मिली, पानी भर रही थी, उसका दूर रूप देख करके फिर ललच गया। उसने जरा पानी पिला देना, तो पानी की प्यास नहीं उसको तो मोह की प्यास है। उसने पानी पिला दिया, अपने घर चली वीर के पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजे पर गया तो उसका पति वहां पर मिला। उसने कहा जी कहिए आपके क्या, अब साधु का जैसा रूप हो गया है, दाढ़ी बढ़ गई और ये केस बढ़ गए हैं। उसने कहा जी तुम्हारी पत्नी से ये जो गई अपनी लड़की से मिलना चाहता, उसको बुला दो। उसने एकदम निश्चल रूप में उसको बुला दिया। वो आई, उसने कहा क्या चाहती हूं, क्या चाहते हो, भिक्षा लोगे, रोटी लोगे। जो रोटी नहीं, तुम अपने ये केस वाली जो सुई है लगाने वाली उसको दे दो। उसने दो निकाल करके दे, उसने ले लिया, वो समझी नहीं और अपनी आंखों में उसको घुसे लिया। ये आंखें सब तुम्हें धोखा देती हैं, इसलिए रहेगा बांस न बजेगी बांस, आंखें नहीं रहेगी और बस एकमात्र कृष्ण में अपने चिंता को लगा लूंगा। इसके बाद में वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए वृंदावन। एक बच्चा छोटा सा मीरा सांवला साहब, देखा तो नहीं, ये कैसा बड़ा मधुर उसका शब्द। बाबा कहां जाओगे, तुम कहां जाओगे बेटा, मैं वृंदावन जा रहा हूं। अरे मैं भी तो वृंदावन, हमें लेता चलेगा तो क्यों नहीं लेता चलूंगा। अच्छा अपनी लठिया दे दो, बस लठिया लेकर के थोड़ी देर बाद में कहता है अरे वृंदावन बाबा आ गया। अरे आ गया, और वो अपनी भावना से कृष्ण को देख करके मन ही मन में और श्लोक रचना करता जाता था, उसी का नाम हुआ कृष्ण करणाम, कृष्ण के कानों के लिए पारमन में। अभी सभी भक्त लोग पाठ करते हैं, यदि भक्त होना चाहते हैं उनके ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें जब वहां पर आ गया तो उसने लटिया छोड़ करके चला गया। ऐसे ही ये सब साधक हैं, बिल्ल मंगल इत्यादि साधन से फिर भावावस्था आती है। भावावस्था से जब प्रेम होता है तो प्रेम होने के बाद में कृष्ण मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। गोपियों का जो उदाहरण दिया, ये उद्धव का जो उद्धव दिया और द्वारकावासियों का दिया, ये साधक नहीं है, ये सिद्ध हैं, इनकी सिद्ध सेवा है। उसी की लालसा से हम जब साधन करेंगे तब वो साधन साधन वो भाव भाव है। इन चीजों को समझ करके भागवत को समझने की चेष्टा करें तो भागवत की कथाओं को समझ सके। सभी तुलसी के पत्ते बराबर हैं, बात तो ठीक है, किंतु सभी भक्त लोग बराबर नहीं है, सभी साधक लोग एक नहीं है, उनमें तारतम्य होता है, कोई छोटे बड़े होते हैं। अभी जो ध्रुव है प्रहलाद के समान नहीं है, प्रहलाद चित्रकेतु के समान नहीं है, चित्रकेतु उद्धव के समान नहीं है और उद्धव गोपियों के समान नहीं है। हमको भक्ति करनी है ब्रज की गोपियों की, यदि ये भक्ति पानी है तो भागवत की कथा सुनो। गोपियों जैसे कैसे उन्होंने कृष्ण की सेवा की, आराधना की, ऐसे आराधना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आज यहीं तक रहे, करीब डेढ़ घंटा पौने दो घंटा हो गया, इसलिए अभी थोड़ा सा यदि होगा तो शुभानंद ब्रह्मचारी जी बोलेंगे कि अब समाप्त करेगा। और फिर कल ऐसे ही जैसे आज कल आया था तो मुझे कुछ लग रहा था कि सभा मंडप में लोग बहुत कम हैं। आज कुछ खुशी है कि आज कुछ कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इतने लोग आए कि इसमें जगह न मिले। कल अपने अपने सभी साथियों को, सहेलियों को, अच्छे अच्छे लड़कों को जो ये नए नए सुने उनको संस्कार भी देने आएगा, तब देश यथार्थ में समृद्ध होगा। लड़ाई झगड़ा मामला मुकाबला नहीं रहेगा श्रीमद भागवत सुनने से, यथार्थ कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। इस चीज को समझ करके हम लोग भागवत श्रवण करें। आज यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कृष्ण सबके हृदय में शुद्ध भक्ति दें, ये श्रीमद भागवत सबके हृदय में शुद्ध भक्ति दें, आप लोग शुद्ध भक्ति को पहचान सकें और सत्संग करते हुए गुरु पदाश्रय करके शुद्ध रूप में कृष्ण की तरफ में आ गए। गौर प्रमाण।